पिछले इतवार को हमने परमेश्वर के वचन को आरंभ किया था और मैंने आपको बताया था कि हम एक सीरीज को चलेंगे और जो पिछले इतवार को खास तौर से जो विषय था वो मैं हूँ को हमने समझा था और जो मैं हूँ पर हमने पिछले इतवार विचार किया था और देखा था हमने निर्गमन की पुस्तक से कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने योहन्ना के सुसमाचार में लगभग 20 बार मैं हूँ शब्द को इस्तेमाल किया और तब हमने पुराने नियम से उस मैं हूँ के शब्द को समझने का अर्थ को समझने का प्रयास किया था। परमेश्वर की सहायता से हमने पिछले में इस स्तर पर रहकर जो यीशु मसीह ने नए नियम में सुसमाचार योहन्ना में वो दावे दिए हैं उन दावों को देखते हुए और उसने कहा इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ और तब हमने पुराने नियम से कब से ये मैं हूँ शब्द आरंभ हुआ कैसे आरंभ हुआ क्यों आरंभ हुआ इसका अर्थ क्या है उन सारे विषयों को हमने परिचय के रूप में पिछले इतवार को उस पर मैं हूँ शब्द पर अध्ययन किया था और हमने देखा था कि पूरी बाइबल में लगभग 61 बार मैं हूँ शब्द आया है और सबसे ज़्यादा योहन्ना के सुसमाचार में स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने इस मैं हूँ शब्द को के द्वारा अपने आप को संबोधित किया है और तब हमने कहा था कि हम यीशु मसीह के उन 7 दावों को देखेंगे जो यीशु मसीह के 7 दावे हम योहन्ना में पाते हैं। ये 7 दावों को अब यीशु ने कहा मैं जीवन की रोटी हूँ मैं जगत की ज्योति हूँ मैं द्वार हूँ मैं चरवाहा हूँ मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ मैं मार्ग हूँ मैं दाखलता हूँ। ये 7 दावे जो योहन्ना में प्रभु यीशु मसीह के हैं और हमने कहा था कि हम क्रम रीति से इन 7 दावों पर हम अध्ययन करेंगे और ये बहुत जरूरी है और तब हमने कुछ और बात को भी देखा योहन्ना के सुसमाचार के लिखने के उद्देश्य को देखा था कि योहन्ना के सुसमाचार का लिखने का उद्देश्य क्या है क्यों लिखा गया है और तब हमने इस बात को भी सीखने का प्रयास किया था कि योहन्ना का सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह को जो परमेश्वर पुत्र है किस रीति से दर्शा रहा है और हमारा ये प्रयास जब हम इस चीज को हम अध्ययन कर रहे हैं तो इनको अध्ययन करते हुए 2 चीज होगी ना केवल प्रभु यीशु मसीह के दावों को देखेंगे सीखेंगे लेकिन इसके द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो योहन्ना सुसमाचार कह रहा है उस अध्यायों में जाते हुए लगभग पूरी पुस्तक का हम अध्ययन कर लेंगे संक्षिप्त में पूरी पुस्तक का हम अध्ययन कर लेंगे। तो ये हम मेरा मुख्य उद्देश्य था कि हम ना केवल उस शब्द को समझें ना केवल उन दावों को समझें लेकिन इसके साथ साथ हम योहन्ना के सुसमाचार को भी समझ सकें और परमेश्वर की सहायता से हम ऐसा करना चाहेंगे। तो आज जो हम देखना चाहेंगे हमने हमारे इन बच्चियों ने बेटियों ने 2 स्थलों को पढ़ा था मेहरबान से निकाल लीजिए योहन्ना उसका 6 अध्याय और उन्होंने इन 2 अध्याय में से सॉरी योहन्ना 6 अध्याय के 2 अलग अलग खंडों को हमारे पढ़ दिया था और आज जो हम ठहरना चाहेंगे यदि मैं सोचता हूँ शायद हम पूरा आगे नहीं बढ़ पाएंगे फिर भी हम प्रयास करेंगे कि हम जल्दी से उन को देख सकें। पहला खंड पढ़ा था 22 पद से लेकर 40 पद तक और दूसरा खंड पढ़ा था 41 पद से लेकर 59 पद तक। तो ये योहन्ना के सुसमाचार के बारे में हमने इस बात को देखा था। तो जब हम इस बात को देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने योहन्ना उसके 6 अध्याय उसके 35 पद में पहला दावा है फर्स्ट क्लेम। पिछले इतवार को बहुत सारी बातों में परिचय के रूप में आपके साथ शेयर कर चुका हूं। सो पहला दावा प्रभु यीशु मसीह ने कहा यीशु ने उनसे कहा जीवन की रोटी मैं हूं जो मेरे पास आता है भूखा ना होगा और वो जो मुझ पर विश्वास करता है कभी प्यासा ना होगा। जीवन की रोटी मैं हूं जो मेरे पास आता है भूखा ना होगा और वो जो मुझ पर विश्वास करता है कभी प्यासा ना होगा। बाइबल की एक सच्ची विशेषता और एक आनंद की बात है मैं बार बार इसको दोहराता हूं आप लोगों के सामने और मुझे बहुत अच्छा लगता है हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो पहल करके आपको और मुझको अपने पास बुलाता है। जीवन चाहिए शांति चाहिए उद्धार चाहिए प्रेम चाहिए पवित्रता चाहिए क्षमा चाहिए मेरे पास आओ मेरे पास आओ। संसार के लोग संसार के गुरु संसार के महात्मा संसार के और जो ईश्वर और दूसरे लोग कहते हैं तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ ये करो तुम जाओ वो करो तुम जाओ वो पहले भेजते हैं, पहले भेजते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो पहले अपने पास बुलाता है और बुलाने के बाद तब भेजता है। ये उल्टा है, ये उल्टा है, और ये सबसे अच्छी आनंद की बात है। तो हमारा परमेश्वर कहीं भी आप देखिएगा क्यों, और हमने पिछली बार इस बात को देखा था क्यों उसने, मैं कहा क्योंकि उसने पहल करी है ताकि वो मेरे और आपके पास पहुंच जाए। और इसीलिए हमने निर्गमन उसके तीसरे अध्याय में इस बात को देखा था, जब इसराइलियों की स्थिति ऐसी हो रही थी तो उसने परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हारी पीड़ा को देखा है, मैंने तुम्हारे पुकारने को सुना है, मैंने तुम्हें जाना है, और इसलिए मैं उतर आया हूं, और इसलिए मैं उतर आया हूं। और यही हम यूहन्ना उसके तीसरे अध्याय 16 पद में देखते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है अर्थात मुझसे और आपसे प्रेम किया, जब उसने मेरी और आपकी पीड़ा को देखा, जब उसने मेरे और आपके पाप के बंधन को देखा, जब उसने मेरे और आपके स्थिति को देखा, दुर्दशा को देखा, और यह देखा कि इस पाप के कारण मैं और आप नाश हो रहे हैं, तो परमेश्वर ने अपने प्रेम में होकर विवश होकर उसने स्वर्ग सिंहासन को छोड़ करके मेरे और आपके पास आ गया। उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। उसने पहल करी मेरे और आपके पास आने की। ये बाइबल का परमेश्वर है, ये अद्भुत परमेश्वर है, ये प्रेमी परमेश्वर है जो मनुष्य को उसने सृष्टि करके छोड़ नहीं दिया। यद्यपि मनुष्य ने सृष्टि के बाद अपराध किया, पाप किया, विद्रोह किया, परमेश्वर से अलग हुआ, लेकिन फिर भी उसने पहल करके मेरे और आपको बचाने के लिए वो इस पृथ्वी पर आ गया, और इसीलिए वो अपनी सेवा में प्रभु यीशु मसीह बार 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 उन दावों को ला सके, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। और जब हम इसमें कहते देखते हैं तो यहां पर यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, जो कोई मेरे पास आता है, जो कोई मेरे पास आता है भूखा ना होगा, और वो जो मुझ पर विश्वास करता है प्यासा ना होगा। रोटी, मनुष्य को रोटी क्यों आवश्यक है, मनुष्य को रोटी क्यों आवश्यक है? अगर हम बहुत पीछे भी जाएं तो परमेश्वर जब मनुष्य को की सृष्टि की थी तो अदन की बाटिका में रखा था, और अदन की बाटिका में रखते हुए उसने काम दिया था, और ये काम दिया था कि वो बागवानी करे, खेतीबाड़ी करे, और क्या करे, उस खेतीबाड़ी से वो अन्न उत्पन्न करता था और वो रोटी खाता था। पाप पे गिरने बाद उसका यही काम था, बाद में परमेश्वर ने उसको अदन की बाटिका में से निकाला था। लेकिन रोटी ये मेरे और आपको जीवन प्रदान करती है। अभी मैं आत्मिक जीवन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप सोचिए हम क्यों रोटी खाते हैं, क्यों रोटी खाते हैं, हमें क्यों रोटी चाहिए? जरूर केवल भूख मिटाने के लिए, केवल भूख मिटाने के लिए नहीं है, जरूर भूख मिटती है उससे, उसको भी हम थोड़ा समझेंगे, वास्तविक भूख को हम समझने की आज कोशिश करेंगे, है ना। लेकिन रोटी जो है जीवन प्रदान करती है, रोटी जो है वो शक्ति प्रदान करती है, बल प्रदान करती है, बल प्रदान करती है। मुझे इसकी व्याख्या ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। रोटी संतुष्टि प्रदान करती है, रोटी संतुष्टि प्रदान करती है, रोटी एक आशा प्रदान करती है, आशा प्रदान। लेकिन जो चार चीजें मैंने कही और भी आप जोड़ सकते हैं उसमें, लेकिन मैं जो विचार कर रहा था, जो चार चीजें मैंने कही, इसी चीज को हम दूसरे पहलू में, आत्मिक पहलू में भी देख सकते हैं और देखेंगे, देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सो ये सच्ची बात है। तो जब परमेश्वर अपने वचन में वो आगे बढ़ता है कि इससे पहले जब वो प्रभु यीशु मसीह 35 पद में आकर के ये बात को कहे कि जीवन की रोटी मैं हूं, क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ हुआ? दो घटनाएं घटी हैं, दो घटनाएं घटी हैं। एक घटना एक घटी है जहां प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछलियों से 5,000 लोगों को खिलाया है, और संभवतः बाइबल को विद्वानों का कहना है कि 5,000 से ज्यादा लोग थे, 5,000 तो केवल बड़े बड़े थे लेकिन उनके परिवार के और भी लोग होंगे, 5,000 को लोग खिलाया है, और उसके बाद 12 टोकरे बचे हैं। 5,000 लोग खिलाया, 12 टोकरे बचे। क्यों ये 12 टोकरे बचे हैं? ठीक है, 12 टोकरे 12 शिष्य को प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया, प्रभु यीशु मसीह को सिखाना चाह रहा है, प्रभु यीशु मसीह को सिखाना चाह रहा है। केवल रोटी देकर ये नहीं कह रहा तुम रोटी के खा खाकर मस्त रहो, ये नहीं कहना चाह रहा, लेकिन ये कहना चाह रहा है तुम मेरे साथ रह करके तुम भरपूरी के साथ जीवन को प्राप्त कर सकते हो, भरपूरी के साथ प्राप्त कर सकते हो। और ये 12 शिष्य, क्योंकि यही शिष्य आगे चल के सेवा करेंगे, यही शिष्य आगे चल के सुसमाचार प्रचार करेंगे, यद्यपि उसमें से एक ने अंकार भी करा, लेकिन जो भी शिक्षा दे रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, 12 को साथ लेके कर रहा है। अब उसमें से एक अविश्वास योग्य हो गया, कुछ कुछ और कहानी है, अलग अलग देते हैं, लेकिन उसने उस समय ऐसा करा। तो परमेश्वर भरपूरी का परमेश्वर है, परमेश्वर संतुष्टि का परमेश्वर, उसने को दे रहा है ना केवल 12, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी हुआ। अब जब यह सब कुछ हो गया तो लिखा हुआ है 6 अध्याय के 15 पद में, इसलिए यीशु ये जान करके वे मुझे बलपूर्वक राजा बनाने के लिए ले जाना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर से अकेला चला गया। अब बहुत बड़ी भीड़ है, भूख लग रही है, शिष्य तो कुछ और कह रहे हैं, शिष्य कह रहे हैं इस भीड़ को हम कहां से खिलाएंगे, इनको भेज दे तू। प्रभु कहता नहीं, परमेश्वर मनुष्य की चिंता करने वाला परमेश्वर है, पहली बात। परमेश्वर मेरे आपकी चिंता करता है, चेले नहीं समझ पा रहे हैं, पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा नहीं, हमें इनकी चिंता करनी है, हमें इनकी देखभाल करनी है, हमें इनको देखना है। और परमेश्वर ने उनके लिए उपाय किया, प्रभु यीशु मसीह ने उनका उपाय किया। वो उपाय क्या था, ये उपाय। और परमेश्वर इसके बाद शिष्य को कुछ सिखाना चाह रहे हैं और भीड़ को कुछ सिखाना चाह रहे हैं और वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन लोगों का मस्तिष्क क्या है, लोगों का दिमाग क्या है, लोगों का दिमाग ये, अरे ये तो बहुत अच्छा है, अगर ये राजा बन जाएगा तो फिर हमें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें रोज इसके पास आएंगे 2 रोटी लेकर, ये रोज हमारा पेट भरता रहेगा। मनुष्य को केवल पेट की चिंता, मनुष्य को केवल पेट की चिंता, ये उनका जीवन था, उनका स्वभाव था, क्योंकि उनकी आंखें अभी बंद थी। अभी आगे उसके बाद जैसे वो हुआ, ये हुआ तो आप देखेंगे 16 पद से लेकर के 21 पद से एक और घटना घटी है। अब परमेश्वर क्या शिक्षा दे रहा है, लेकिन ये क्यों एक छोटा सा स्थल इसके बीच में आ गया, जो 16 पद से लेकर 21 पद तक है, वो कौन सी घटना है। घटनी है जब शाम हुई है, चेले झील के किनारे हैं, नाव पर चढ़ने के पश्चात थोड़ा आगे चल रहे हैं, अंधेरा हो चुका है, यीशु अभी उनके पास नहीं आया, और तब क्या हुआ, तेज आंधी चलने लगी, ये लोग थोड़ा घबराए हैं, परेशान होने लगे, और जब थोड़े कुछ दूर पहुंचे हैं चलते चलते, तो उन्होंने क्या करा है, किसी को देखा कोई आ रहा है, यीशु नाव में आ रहा है। और ये घटना और भी घटी है जिसका दूसरा साथ सुसमाचार भी वर्णन करते हैं, और भी घटी। और यीशु जब नाव के पास आ रहा है तो ये देख के डर गए, उनको समझ में नहीं आया कौन है, क्या मतलब है, ये लोग अभी तक ना तो इनकी आंखें खुली हैं, ना तो इनकी बुद्धि खुली है, ना इनके मन खुले हैं, पर अभी तक वो यीशु को समझने नहीं पाए, यीशु को ना जाने पाए, ना यीशु को समझने पाए। इनका ध्यान केवल शरीर 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 में, और आज भी जो दुनिया में लोग इस शरीर को लेकर खोजने में लगे पड़े हैं। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है जो हमारे शरीर की चिंता ना करता हूं, बाइबल के बहुत सारे पद हैं, लेकिन मात्र शरीर को प्राथमिकता देना या शारीरिक आवश्यकता को प्राथमिकता देना यह परमेश्वर के अनुसार नहीं है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है यह मनुष्य यदि संसार की सारी वस्तुओं को प्राप्त करे और अपने प्राणों की नहीं उठाए तो उसे क्या लाभ। और उसने किससे कहा, किससे कहा, एक व्यक्ति था जो बहुत धनवान था, उसके पास सब कुछ था, और तब उसने बहुत बड़ी 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 कोठियां बनाई और उसमें बहुत सारा अनाज भर दिया, डॉक्टर को बुलाया, अपना ट्रीटमेंट कराया, अपने मेडिकल सर्टिफिकेट ले लिया, सब कुछ कर दिया, नौकर को रख दिया। अब उसने कहा, अरे भाई मेरे पास तो सब कुछ है, मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, डॉक्टर ने मुझे सर्टिफिकेट दे दिया है कि तेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, कोई हार्ट अटैक नहीं होगा, कोई ये कुछ नहीं होगा, तू बहुत अच्छी तरह रहेगा, मेरे पास धन भी बहुत हो गया, अनाज भी बहुत हो गया, अकाल पड़ेगा तब भी मैं खाऊंगा, मेरे पास नौकर भी बहुत है, मैं सब कर दूंगा, मुझे कोई चिंता नहीं, अब मैं आराम से चैन से जीऊंगा। परमेश्वर ने कहा, क्या तू जानता है कि तेरा प्राण तुझसे आज ही ले लिया जाएगा। और तब प्रभु ने शिक्षा दी कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं। सो परमेश्वर का वचन कई बार को कई सारी जगह था, परमेश्वर चिंता करता है। अगर मत्ती 6 अध्याय को पढ़ेंगे तो 6 अध्याय के 30 पद से आप पढ़िए, तो वहां पर परमेश्वर कहता है तुम्हारी कीमत मेरे लिए उन सीकलों गौरियों से सीख लो, जो गौरैया कितनी अच्छी रीति अपने जीवन को ढकती हैं, सब कुछ करती हैं, वो सुलेमान से भी अच्छा वस्त्र पहनती हैं, तुम्हारी कीमत उनसे कहीं बढ़कर है, और इसलिए तुम चिंता ना करना। तो परमेश्वर का शिक्षा पूरी रीति संतुलन में है, लेकिन जब हम परमेश्वर को छोड़ करके परमेश्वर की खोज को छोड़कर, अभी हम आगे आएंगे उस शब्दों पर, उनको छोड़कर के केवल हमारी प्राथमिकता शरीर बन जाती है, चंगाई बन गई और ये चीज की पूरी बन गई, मेरा विवाह हो जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे मेरी बीमारी छूट हो जाए, मेरे को ये हो जाए वो हो जाए, ये सब कुछ हो जाए, सारी चीज। कितने लोग आते हैं, कितने लोग यहां पर आते हैं, हमारा फलाना जन बीमार है, आप उसके लिए प्रार्थना कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, वो कर दीजिए, बहुत लोग आते हैं। प्रार्थना करना पाप नहीं, बुरा नहीं है, हम करते भी हैं और करेंगे भी, लेकिन अगर हमारा ध्यान केवल एक ही चीज पर है तो गलत है, वो गलत है। हम केवल यह प्रचार नहीं करते कि ठीक है यीशु मसीह में तुम्हें केवल शरीर 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 की भरपूरी है, नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं सिखाता। और यहां पर यही प्रभु सिखाना चाह रहे हैं। अब जब यह घटना घटी है, ये लोग अभी तक यीशु को नहीं पहचानने पाए, शिष्य हैं और वो डर रहे हैं, और तब डरने के बाद तब आगे चल के लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परंतु उसने कहा, उसने उनसे कहा, मैं हूं डरो मत, मैं हूं डरो मत। वे उसे नाव में चढ़ा लेने के तौर को तैयार हुए और तुरंत नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वे जा रहे थे। अब आगे बढ़ रहे, अब प्रभु यीशु मसीह ने इस समय इन शिष्यों को कुछ संदेश दिया है, अब आगे कुछ और घटने वाला है। इससे पहले प्रभु यीशु मसीह यह कहे कि मैं जीवन की रोटी हूं, अभी और कुछ घटने वाला है, लेकिन प्रभु ही चाह रहे हैं कि शिष्य यीशु को जान जाएं, समझ जाएं। और मेरे प्रियो, ये कितने अधिक दुख की बात होती है, ये कौन है शिष्य है? जो प्रभु के साथ रह रहे हैं, जो उसके आश्चर्य कर्मों को देख रहे हैं, जो उसकी सुन रहे हैं, अभी तक यीशु को नहीं जाने पा रहे, ये नहीं। क्या मेरा और आपका जीवन ऐसा तो नहीं है? शायद 10 साल से हम यीशु के साथ कहते हैं, हमने यीशु को जान लिया, हम विश्वासी बन गए, बपतिस्मा ले लिया, हम कलीसिया के सदस्य बन गए, हम ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन जैसा यीशु को जाना चाहिए आज तक हम नहीं जाने पाए, आज तक हम जाने, जैसा हमारा विश्वास होना चाहिए आज तक हमारा विश्वास वैसे नहीं बन पाया। हमें देखना, हमें सीखना है, क्या हम इस शिष्य के समान तो नहीं है? उसके साथ रहने के बाद, उसकी शिक्षाओं को पाने के बाद, उसकी सुनने के बाद, उसके आश्चर्य कर्मों को देखने के बाद, हमारे प्रभु हमारी प्रार्थना को उत्तर देता है, हमारी चिंता करता है, सब बहुत, फिर भी हमने यीशु को बहुत कम जाना है। मेरे और आपको सोचना विचारना है और परमेश्वर से सहायता मांगनी है, प्रभु मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर ऐसी सहायता करिए कि मैं और अधिक दिन पर दिन आपको जान सकूं, आपको समझ सकूं, आपको पहचान सकूं, आपके पास आ सकूं और आप पर निर्भर हो सकूं। यह हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, ये हमारे केवल ये नहीं प्रभु ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, नहीं, लेकिन प्रभु ऐसा कि मैं आपको जान सकूं, आपको पहचान सकूं, ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। तब आगे चल करके, तब दूसरे दिन भीड़ आगे बढ़ी है और आगे बढ़ने लगे, और ये उनको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह ने अभी क्या क्या किया था, कल क्या किया था, अब आज दूसरा दिन आ गया, और तब ये भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे आने लगी। और शिष्य ने क्या कहा? और शिष्य ने तो सोचा, भैया बड़ा मजा आ गया, आज फिर प्रभु खिलाएगा, कल तो खिलाया था, सब कुछ अच्छा हो गया, लोग उनके साथ हमारी भी वाई वाई हो रही थी, यीशु के साथ हमारी भी वाई वाई हो रही थी, आज फिर खिलाएगा, क्या हो गया? 26 पद में, तब उसके बाद 22 अध्याय से हम 22 पद से आगे बढ़ते, तब यीशु ने मेहरबान से 25 पद में पढ़ रहा हूं, जब उन्होंने उनसे झील के दूसरी ओर पाया तो उसे कहा, रब्बी यहां कब आया है? प्रश्न, रब्बी गुरु तू यहां कब आया है? प्रभु यीशु मसीह को क्या उत्तर देना चाहिए? अभी आया हूं, थोड़ी देर पहले आया हूं, 1 घंटे पहले आया हूं, कल शाम को आया हूं, हम होते तो शायद ये उत्तर देते, पर प्रभु यीशु मसीह उत्तर क्या दे रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह कुछ और उत्तर दे रहे हैं, क्यों? वो सबको जाने वाला प्रभु है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उन्हें उत्तर देते कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, सच नहीं, योन्ना जब सुसमाचार लिख रहा है, ध्यान दीजिएगा अपने सुसमाचार को व्यक्तिगत रीति पढ़ते हुए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे कहता हूं, कई बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, फिर कई बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं। ये 3 तरीके हैं प्रभु की बात करने के लिए, मैं कहता हूं, मैं सच कहता हूं, मैं सच सच कहता हूं। अगर वो कह रहा है मैं सच सच कहता हूं तो उसका मतलब उसका बल है, उसमें जोर है, उसको समझना है। और तब वो कह रहा है मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे कि तुमने चिन्ह देखे हैं, चिन्ह देखे इसलिए नहीं, बार बार उनको चिन्ह दिखाए गए थे फिर वे चिन्ह की मांग कर रहे थे, वो चिन्ह को देखने के द्वारा उनको तो विश्वास करना चाहिए था, ये सार्वभौमिक परमेश्वर है, ये परमेश्वर के उसे भेजा गया है सब कुछ, लेकिन फिर भी चिन्ह मांग रहे हैं। और हम सुसमाचार में बार बार इस बात को देखते हैं, जो सदूकी और फरीसियों का भी निरंतर प्रभु के साथ वाद विवाद रहा, वो कह रहे हैं तुम इसलिए नहीं कि तुमने चिन्ह देखा, इसलिए नहीं कि तुमने ये देखा कि आश्चर्य से कि इस रोटी से कितने लोग खिला दिए गए, कैसे उनको तृप्ति मिली, कैसे उनके जीवन में कुछ किया परमेश्वर ने, ये नहीं देख रहे, लेकिन तुम्हारे पेट क्या रोटी खाकर भरे। तुमने प्रभु को जैसे जाना चाहिए था तुमने नहीं जाना है, तुमको जैसे परमेश्वर को देखना चाहिए था तुमने नहीं देखा है, ना तुमने परमेश्वर के आश्चर्यकर्म को समझा है, ना तुमने परमेश्वर की भलाई को समझा है, ना तुमने परमेश्वर की प्रभु सत्ता को समझा है, ना तुमने प्रभु के अधिकार को जाना है, ना तुमने प्रभु की शक्ति और सामर्थ को जाना है। तुम अगर आ रहे हो तो इसलिए आ रहे हो ताकि तुम्हारे पेट रोटी खाकर फिर। मेरे प्रियो, मैं और आप यीशु मसीह के पीछे क्यों चल रहे हैं, यह मतलब नहीं कहना चाह रहा हूं मैं कि परमेश्वर हमें जीवन में हमारी सुधि नहीं लेता, परमेश्वर हमारे जीवन में सुधि लेता है, लेकिन हमारे जीवन की प्राथमिकता क्या है, प्रभु यीशु मसीह है या केवल वो आवश्यकताएं जो हमारी पूरी होनी है। प्रभु यीशु मसीह हमारी आवश्यकताओं पूरा करता है, लेकिन अगर हमारी प्राथमिकता केवल आवश्यकता है और प्रभु यीशु मसीह हमारे दूसरे स्थान में तो गलत है, हम अभी भी अंधकार में है। लेकिन हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह प्राथमिकता बनना है, उस वो प्राथमिकता बनना है, क्या वो हमारे जीवन में प्राथमिकता है। और ये भीड़ अभी तक इसी बात को नहीं समझ पाई थी और प्रभु यीशु मसीह यही कहना चाहते हैं, यही सिखाना चाहते हैं। और तब प्रभु कहते हैं तब उस भोजन के लिए परिश्रम ना करो जो नाश हो जाता है। क्या कहना चाह रहा है प्रभु यीशु मसीह, कल से मैं और आप कोई काम ना करें, नौकरी पर ना जाए, अगर मैं मजदूरी करूं तो मैं मजदूरी ना करूं, अगर मैं किसी ऑफिस में काम करूं, क्या ऐसा नहीं करा भाई, काम करने ही तो पड़े, जब भोजन चाहिए तो परिश्रम तो करना पड़ेगा। क्या कहना चाह रहा है प्रभु, प्रभु मना करना चाह रहा है? प्रभु के वचन में साफ लिखा है ना कि जो व्यक्ति परिश्रम ना करे वो खाने ना पाए, बहुत सारी शिक्षाएं। हे आलसी, वो कहता है हे आलसी तू चींटियों के पास जा, वो क्या करते हैं चींटियों से सीख, वो बरसात से आने से पहले कैसे अपने लिए भोजन इकट्ठा करती हैं। नीति वचन 6 अध्याय पढ़िए, किस रीति से वो परिश्रम करती हैं, उनके कोई हाकिम नहीं होता लेकिन फिर भी वो परिश्रम करती हैं। प्रभु परिश्रम करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, हम कई बार एक पद को लेकर के अपनी अपनी बातों को सामने रख देते हैं और हमें सावधान रहना है, गलत शिक्षाएं इसी तरह से आती हैं, गलत शिक्षाएं इसी तरह से आती हैं। प्रभु ये नहीं सिखा रहे, प्रभु ये देख रहे हैं उनके जीवन के लिए देख रहे हैं कि कल परसों से भाग दौड़ कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, इधर भीड़ में भाग रहे हैं, वहां भीड़ में मेरे पीछे चले यार भाग रहे हैं, क्यों, केवल रोटी में जाए, केवल रोटी में जाए, केवल रोटी में जाए, केवल रोटी। प्रभु यीशु मसीह क्या है, वो क्या देने के लिए आया वो नहीं जान रहे, क्या देने के लिए आया, केवल प्रभु यीशु मसीह रोटी देने के लिए थोड़ी ना आए थे, प्रभु यीशु मसीह तो जीवन देने आए थे, प्रभु यीशु मसीह पाप से छुटकारा देने आए थे, यीशु मसीह अपने अपने परमेश्वर की सामर्थ को प्रदर्शित कर रहे थे सब कुछ। तुमने अभी तक तो परमेश्वर के बारे में बात नहीं करी, उन स्वर्गीय वस्तु के बारे में बात नहीं करी, स्वर्ग वस्तु खोज तुम्हारे जीवन में नहीं दिखाई दी, तुम शरीर 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 लेके पूरे सुबह से लेके शाम तक भागे दौड़े पड़ रहे हो। अच्छा यीशु आ गया, चलो वहां चले गए, अच्छा यीशु आ गया, अच्छा चलो वहां चले, अच्छा यीशु आ गया वहां चले। आज भी यही हो रहा है, हीलिंग मीटिंग कहां भैया, वहां पर है, दौड़े जाओ, हाँ हिलिंग मीटिंग में जाएंगे, हाथ उठाएंगे ठीक हो जाएंगे, नौकरी कहां मिलेगी, कौन प्रार्थना करेगा, वो करेगा, अच्छा वहां चले जाओ, है ना, वहां प्रार्थना करें नौकरी मिल जाएगी, शादी हो जाएगी, पैसा मिल जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कितने लोग हैं, अच्छा ठीक है अनाउंस देगा, 1000 रुपए दीजिए आपको 10,000 रुपए मिल जाएंगे, है ना। एक बार यहां पर लखनऊ में जॉनी लीवर आए थे और यहां पर मीटिंग चल रही थी, और जॉनी लीवर और जो यहीं के एक चर्च के पास्टर लोग मीटिंग करा रहे थे, और मीटिंग कराते कराते उसके बाद क्या नाम से उन्होंने कहा ऑफरिंग लेने से पहले कि आप दीजिए और प्रभु आपको आशीष देगा, आप खुल के दीजिए, मन खोल कर दीजिए, प्रभु आपको आशीष देगा, है ना, आप परमेश्वर को 10 रुपए देंगे तो आपको 50 परमेश्वर देगा। उसके बाद जॉनी लीवर को खड़े होकर बोलना था और जॉनी लीवर खड़े होकर बोल रहे हैं, अरे जो पास्टर ने कहा ये पास्टर ने सही नहीं कहा है, पास्टर ने सही नहीं कहा, आप 1000 देंगे परमेश्वर आपको 1,00,000 देगा। अब क्या कर रहे हैं ये, सच्ची बात बता रहा हूं मैं, क्या कर रहे हैं ये, क्या परमेश्वर ये सिखाता उसका वचन, मुझे और आपको सावधान रहना है, मुझे और आपको सावधान रहना है इन अंतिम दिनों में, इन झूठी शिक्षाओं से, इन झूठी बातों से सावधान रहना है। प्रभु यीशु मसीह, मैं फिर से कह रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह हमें नहीं चाहता कि हम भूखे मरें, हम गंगाल हो जाए, प्रभु नहीं चाहता, लेकिन प्रभु यह चाहता है कि हम उसकी धार्मिकता को खोजे देखें, और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले उसके राज और धार्मिकता की खोज करो तो तुम्हें सब वस्तु मिल जाएगी। सब वस्तु मतलब यह नहीं है कि अगर तुम्हें हवाई जहाज मिले चाहिए तो हवाई जहाज भी मिल जाएगा। भजन संहिता कहता है परमेश्वर तेरी मनोकामना को पूरा करेगा, लेकिन अपने मन के अनुसार। जो बलि है, जो बलि है, क्या एक बच्चे को हाथ में वो चाकू मांगेगा आप बस बच्चे के हाथ में चाकू दे देंगे? बाकी बच्चा चिल्लाएगा, रोएगा, मांगेगा, लेकिन मां जानती है, पिता जानता है ये चाकू के लायक बच्चा नहीं है, अगर दिया जाएगा तो हाथ काट लेगा। परमेश्वर जानता है क्या चीज मुझे और आपको चाहिए जो मेरे जीवन दैनिक जीवन के लिए आवश्यक है, परमेश्वर उसको देता है। लेकिन हमें भ्रम से बचना है, क्या चीज के लिए हम परिश्रम कर रहे हैं, हमारा जीवन क्या है। तब आगे चल के वो कहता है हम उस भोजन के लिए ना करो जो नाश हो जाता है, उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक बना रहता है। अनंत जीवन तक बना रहता, पहली बात। दूसरी बात वो क्या कह रहा है, ना केवल अनंत जीवन तक, उसके साथ साथ कह रहा है जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उस पर अपनी छाप लगाई है। कौन, किसके लिए परिश्रम करना है? अनंत जीवन के लिए परिश्रम करना है। वो भोजन जो अनंत जीवन प्रदान करेगा, वो भोजन जो अनंत जीवन तक बना रहेगा। आगे चल के वही बात को हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह को समझाते हैं, अभी हम आएंगे उस स्थल पर। तब इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तब कहता है 28 पद में, इसलिए उन्होंने उनसे कहा परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें। तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, प्रभु यीशु मसीह कहा परमेश्वर के कार्य ये क्या है, उसने कहा कि परमेश्वर के कार्य ये है कि तुम जिसे उसने अर्थात किसने, पिता ने किसको भेजा, पुत्र को भेजा, यीशु को भेजा, उस पर विश्वास करें। ये कार्य वो कह रहा है यहां पर, परमेश्वर का कार्य ये है जिसे उसने भेजा है तुम उस पर विश्वास करो। तुम उस पर विश्वास, क्या विश्वास करो? क्या वो एक बहुत बड़ा गुरु है ये विश्वास करो, बहुत बड़ा आश्चर्य काम करने वाला ये विश्वास करो, बहुत बड़ा चंगाई देने वाला ये विश्वास करो? नहीं, ये नहीं। चंगाई तो बहुत लोग दे देंगे सड़क पे आपको, बहुत ऐसे मिल जाएंगे, आश्चर्य काम भी कर देंगे बहुत सारी चीजें को लिए, है ना, हाथ में रुमाल से कुछ और निकाल देंगे, वो सब कुछ कर देंगे, बहुत भूल दिमाग खराब कर देंगे आपका। वो नहीं कह रहा परमेश्वर, परमेश्वर का वचन कह रहा है वो चीज तुम्हें मरने के बाद भी तुम्हारे साथ बनी रहेगी, इस संसार से जाने के बाद भी तुम्हारे साथ बनी रहेगी। ये संसार तो कुछ समय का है। अभी पिछले दिनों में भैया ने कई बार अपने नाना का जिक्र करा, यहां से खड़े होकर, पिछले 4 तारीख को उनका देहांत हो गया, जानता रहे ना, 4 तारीख को उनका देहांत हो गया, और क्या नाम से 5 तारीख को हम लोग सब उनके फ्यूनरल में हम लोगों को जाना पड़ा, आंटी भैया हम लोग सब गए। सबसे आनंद की बात ये थी, मैं एक बात कह रहा था, उन्होंने मरते दम तक शायद 5-6 दिन बाद उनका बोलना बंद हो गया था, बोल में 106 साल से प्लस में थे कुछ ऐसी, और लेकिन उन्होंने एक काम परमेश्वर ने उनकी महिमा, अपनी महिमा के लिए करा। जिस रीति से वो अन्य जाति परिवार से प्रभु को लेकर आए थे, प्रभु को पाया था, सब कुछ छोड़ दिया था उन्होंने, सब कुछ छोड़ दिया था, और सब कुछ छोड़ने के बाद जब प्रभु में आए, इतने लोग नेपाल में, इतने लोग जो ये कह सके इन्होंने मेरे जीवन को बनाया है, बचाया है, उद्धार दिया है, वो जीवन। तो उनका पूरा जीवन, जेल में जाने के बाद भी, कटाई को उठाने बाद, कौन सा जीवन, किस चीज के लिए उन्होंने परिश्रम किया? उनका मरते तक तक ये जीवन, मैं देख रहा था कि कोई, कई बार सोच रहा था, बहुत सारे विचार आ रहे थे समय, उन्होंने कोई बिल्डिंग नहीं बनवाई, कोई चर्च नहीं बनाया, कोई और कुछ नहीं करा, लेकिन बहुत लोगों अपने पीछे छोड़ गए। जब वो स्वर्ग में परमेश्वर के सामने होंगे, पता नहीं कितने लोग नेपाल के उनके सामने होंगे जिनको वो खड़ा कर सके हैं, इससे बड़ा धन और क्या होता है। ये प्रभु, ये उन्होंने उसका कार्य के लिए परिश्रम किया है। और मुझे एक बार फिर सोचने को मजबूर हुआ उस दिन मैं, कि प्रभु जो जीवन आपने मुझे शेष दिया है, मुझे ऐसा अनुग्रह कर दीजिए कि मेरा शेष जीवन लोगों के लिए लग सके। मैंने उनके लोगों की साक्षियों से अपने आप को थोड़ी देर के लिए सोचने में मैंने बात की अपने आप को, सच है।
प्रभु यही तो सिखा रहे हैं यहां पर, यही तो सिखा रहे हैं, मेरा और आपका खोज क्या है, मेरा और आपका परिश्रम क्या है। और तब वो आगे चल के कहते हैं, आगे चल के चिन्ह की बात खत्म हो जाती है, तब कुछ बातों कह रहे हैं वो आगे चलकर 31 पद में, हमारे पूर्वजों ने जंगल में मन्ना खाया जैसे लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। ये इसराइलियों क्या सोचते थे, इसराइलियों क्या सोचते, बाद में भी यहूदी लोग क्या सोचते, अरे हमारा मूसा था ना वही अगुआ था और वही सब कुछ देता था, मूसा ने नहीं दिया कुछ, मूसा ने नहीं दिया कुछ, मूसा तो खुद हार गया था, मूसा तो खुद परास्त हो गया था, मूसा तो खुद उसमें प्रवेश नहीं कर पाया था, वो मनुष्य के कारण लोगों के कारण इतना अधिक व्याकुल और परेशान हो गया था कि उसने सिया करके वो चट्टान पे दो बार छड़ी मार दी और पटिया को भी तोड़ दिया, परमेश्वर का तू कनान में प्रवेश नहीं करने पाएगा। लेकिन देने वाला कौन था, परमेश्वर था, परमेश्वर था। और कैसे परमेश्वर ने उनको दिया, किस रीति दिया, जरूर 40 साल तक लगातार वे मन्ना खाते रहे, रात में मन्ना गिरता था, बोर को वो बटोरते थे, और हम लोग अभी निर्गमन का अध्ययन कर रहे हैं डिवोशन में पढ़ते थे, और लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही वो धूप निकलती थी मन्ना खत्म। क्या मतलब है, क्या मतलब है, परमेश्वर ताजगी के साथ उनको तृप्त और संतुष्ट कर रहा है, वो मन्ना ताजा मन्ना था, बासी मन्ना नहीं। बटेर दी, शाम होती थी, गोधूली होती थी, आप पढ़ लीजिएगा, अगर घर में जाकर के मन करता है तो निर्गमन उसके 16 अध्याय से आप पढ़िएगा, वहां से आपको मिल जाएगा, निर्गमन 16 अध्याय में सारी कहानी मिल जाएगी। परमेश्वर गोधूली शाम को होता था, जब गोधूली होती है जब पशु लोग वापिस आते हैं, वो गोधूली होती है शाम के समय में, और उस समय में वो परमेश्वर उनको बटेरे देता था, और इतना अधिक बाद में देने लगा इनकी नाक में दम पड़ गया, नाक क्या हुआ, ये चीज उनको संतुष्ट नहीं कर पाई, तृप्त नहीं कर पाई, थोड़ी देर के लिए भूख तो मिटा दिया लेकिन फिर हार गए, पछता गए। तब भी उसके बाद आके कहता है कि इसमें कितने लोग थे जो आगे कनान में प्रवेश नहीं कर गए, रास्ते में नाश हो गए। मेरे प्रियो, वे ना मन्ना वो न मन्ना, ना वो बटेर ना वो मांस ना वो रोटी, उनको संतुष्ट नहीं कर पाई परमेश्वर दे रहा है, लेकिन वो एक चीज का प्रतीक भी था कि कैसे परमेश्वर आने वाले दिन में आनंद जीवन प्रदान करेगा, और उसके लिए कैसे उनको जीवन और सच्ची रोटी देगा, जिसका वर्णन यहां पर आ रहा है। तब आगे चल करके तब वो कहता है, वो उन्होंने खाया, 32 पद, इसलिए यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मूसा ने तो तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से नहीं दी, परंतु मेरा पिता ही है जो स्वर से तुम्हें सच्ची रोटी देता है। मूसा नहीं थी, देने वाला परमेश्वर ही था, तुम सोच रहे मूसा देना, नहीं नहीं, लेकिन अभी भी मैं तुमसे वो कह रहा हूं कि परमेश्वर पिता है, वो तुम्हें रोटी दे रहा है। क्या मतलब है, यीशु वहां पर खड़े हैं, यीशु कह रहे हैं ये रोटी जो यहां खड़ी है, यहां पर है, जिसको पिता ने भेजा है, जिसको पिता है, इस रोटी को तुम्हें अपने जीवन में लेना है, खाना है, इसके जीवन इसको तुम्हें अपने जीवन में अपनाना है, इसको तुम्हें अपने जीवन में स्वीकार करना है, इस पर अपने पर विश्वास करना है, ये यीशु वहां पर ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, और ये तुम्हें संतुष्टि का जीवन देगा, ये तुम्हें जीवन देगा, वो जीवन देगा जो मरने के बाद भी तुम्हारे साथ बना रहेगा, ये जीवन तुम्हें देगा। अब तुम किस चीज की खोज में रहोगे, किस, तब आगे चल कहता है, कह रहा है इसी पद में, मूसा ने तुम्हें वो रोटी नहीं दी, परंतु पिता, मेरा पिता जो है उस स्वर से सच्ची रोटी देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वो है जो स्वर से उतरती है और जगत को जीवन देती है। सच्ची रोटी वो है जो स्वर से उतरती है और मनुष्य को जीवन, जगत को प्रदान करती है। बाइबल में जगत तीन तरह से इस्तेमाल हुआ है, यहां पर जो जगत शब्द है वो लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ है, परमेश्वर ने जगत से प्रेम करा, वहां लोग के लिए है, जगत की वस्तु से जगत से प्रेम ना करो, वो वस्तुओं से है जगत, तो अलग अलग संसार का अलग अलग चित्रण दिया हुआ बाइबल में, उसको समझना है पर्स के बात के, लेकिन यहां लोगों से संबंध है। 34 पद, इसलिए उन्होंने कहा, प्रभु ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर, ये रोटी अभी वो नहीं समझ पा रहे, वो कह रहे प्रभु के पास शायद कोई ऐसी रोटी है, ठीक है वो अभी कल रोटी खाई थी उससे तुम्हारे पेट भरे थे, अब शायद ये कोई और रोटी देगा तो उस समय कुछ और मिल जाएगा, जीवन मिल जाएगा, कुछ और मिल जाएगा, प्रभु हमें रोटी दे, अभी भी नहीं समझ पा रहे कौन क्या रोटी कौन सी है, यीशु वहां खड़ा हुआ है, बात कर रहा है, वो यीशु को पहचाने और जाने नहीं पा रहे हैं। मेरे प्रियो, मुझे और आपको यीशु को जाना और पहचानना है। यीशु के अलावा और कोई नहीं है, यीशु के अलावा कोई नहीं है। किस रीति से, कौन सा दिन था आपने यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता स्वीकार किया? आप बपतिस्मा लेने तैयार हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या आपके अंदर यह निश्चितता है कि आपने अपने जीवन में पापों से पश्चाताप किया है और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया है और अब आप उसके पीछे चलने के लिए तैयार है? आपने उस रोटी को जो यीशु स्वयं रोटी है अपने जीवन में लिया है, खाया है, ग्रहण किया है, स्वीकार किया है, अब वो आपके अंदर है, वो आपके जीवन में है। अगर ये निश्चिता नहीं है तो मैं चाहूंगा कि आप रुक जाएं और बपतिस्मा ना लें। वो निश्चिता आना जरूरी है, वो निश्चिता आना जरूरी है मेरे प्रियो। यहां परमेश्वर इसी बात को समझाना चाह रहे हैं, इस बात को समझाना चाह रहे हैं और तब आगे चल के कहते हैं वो इकत है कि जीवन की रोटी। सो क्या है यह सच है? तब प्रभु यीशु मसीह दो शब्द बोलते हैं, वो भूखा ना होगा और वो प्यासा ना होगा। दो बातें कहने पड़ती है इस पद में। जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है कभी प्यासा ना होगा। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उस रोटी की खोज करना है जिस रोटी से हमें जीवन मिलता है। वो अब यहां पर अगर हम यशाय में जाएं, यशाय उसके 55 अध्याय को देखें और पहले पसले के 3 पद तक पढ़ें और इसी पेज को आगे पलट करके योना उसके 7वें अध्याय में आए और 7वें अध्याय के 37 और 38 पद को पढ़ें तो दोनों स्थलों में प्रभु, वहां पर पुराने नियम में परमेश्वर की ओर से यशाय बोल रहा है, यहां पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं बोल रहे हैं और वो यही कह रहे खड़े होकर, यदि तुम में से कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और मुझ में से पिए और अगर वो पिएगा तो उसमें जल की नदियां बह निकलेंगी। प्रभु यीशु ने सामने स्थिति से क्या कहा था? जो जल मैं तुझे दूंगा वो पिएगी तो तुझे कभी प्यास ना लगेगी, तेरे अंदर से सोता निकलने लगेगा। सोता पड़ क्या मतलब है? परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमें तृप्ति प्रदान करता है, जो हमें संतुष्टि प्रदान करता है, जो हमें शक्ति प्रदान करता है, जो हमें जीवन प्रदान करता है, वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह में जीवन है, प्रभु यीशु मसीह में शक्ति है, प्रभु यीशु मसीह में सामर्थ्य है, प्रभु यीशु मसीह में आशा है कि अनंत जीवन तक वो रहेगा, अनंत जीवन तक, संसार से मर जाएगा लेकिन फिर वो बना रहेगा प्रभु के साथ अनंत काल तक, ये आशा है प्रभु यीशु मसीह में। इसलिए वो कह रहा है कि तुम मुझको खाओ और तभी कर, तब आगे चल करके परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख लिया है फिर भी विश्वास नहीं करते। तुम देख रहे हो, सुन रहे हो, जान रहे हो, फिर भी तुम्हारे अंदर विश्वास उत्पन्न नहीं हो रहा। मेरे प्रियो, क्षमा कीजिएगा, हो सकता है आप में से कितने ऐसे लोग यहां बैठे हो जो कई दिन से परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, संगति अच्छी लग रही है, लोग अच्छे लग रहे हैं, उनकी बातचीत अच्छी लग रही है, लेकिन आपके अंदर विश्वास नहीं उत्पन्न हो रहा। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपके अंदर विश्वास उत्पन्न करें, प्रभु आपको अपने चुनाव में शामिल करें, प्रभु ने अपने, प्रभु अपना कार्य आपके जीवन में करें। और तब वो कहता है, आगे चल के कहता है, वो जो मुझे मुझे देता है, पिता जो मुझे देता है मेरे पास आएगा और जो कोई मेरे पास आएगा वो निश्चय मैं उसे कभी ना निकालूंगा। निश्चय कभी जरूर उस चुनाव में, उसके पास आने में हमारी भूख होनी है, सब कुछ है, लेकिन उसके साथ चुनाव परमेश्वर का, प्रभु सत्ता उसकी है, उसकी है। और प्रभु से प्रार्थना, क्या प्रभु आपने मुझे अपने चुनाव में शामिल किया? क्या प्रभु आपने चुनाव में शामिल किया? परमेश्वर को टाली मत, परमेश्वर के वचन को खेल मत बनाइए, परमेश्वर के वचन को इग्नोर मत करिए। और तब बार बार एक शब्द आ रहा जिस पर मैं नोटिस लाना चाहूंगा, वो क्या कहता है 38 पद में, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी कर रहा हूं। मैं अपने भेजने, और वो भेजने वाला कौन है? ये जो मैं अपनी नहीं लेकिन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए, कहां से आया वो, क्या कह रहा है? स्वर्ग से उतरा हूं। 33 पद में देखिए, ये रोटी वो है जो स्वर्ग से उतरती है। 38 पद में स्वर्ग से उतरा है, 41 पद में स्वर्ग से उतरी है, फिर 42 पद में मैं स्वर्ग से उतरा हूं, फिर 48 पद में वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, फिर उसके बाद 51 पद में वो स्वर्ग से उतरा हूं, और फिर उसके बाद आगे चल करके 58 पद में स्वर्ग से उतरा हूं, उतर दिया। करीब 7 या 8 बार यीशु मसीह कहां से आया है? जो रोटी उन लोगों को खिलाई गई थी वो स्वर्ग से नहीं आई थी भैया, वो किसी बच्चे के हाथ में थी। परमेश्वर ने अपनी सार्वभौमिकता में उसको मल्टीप्लाई करा था, उसको बढ़ाया था। लेकिन ये रोटी जो उनके सामने खड़ी वो कहां से आई है? स्वर्ग से आई है, स्वर्ग से आई है। और स्वर्ग से क्यों आई है? क्यों, अभी मैं बाद में गड़बड़ हो जाएगा, मैं क्यों यीशु ने कहा कि मैं ही मार जीवन अकेला मारूं, मैं जब उसमें आऊंगा तब मैं समझाने का प्रयास करूंगा, अभी नहीं जाऊंगा उसमें, विचार आ रहा था लेकिन रुक जाऊंगा मैं। तो आगे चल करके कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आए और इसलिए वो कहता है कि वो जीवन, ये पिता की इच्छा है। पिता की इच्छा क्या है? 40 पद में परमेश्वर की इच्छा क्या है? क्योंकि मेरे पिता की इच्छा है कि प्रत्येक जो पुत्र को देखता है, पहली बात पुत्र को देखिए, परमेश्वर की इच्छा है कि आप पुत्र को अर्थात यीशु को देखें, पहली इच्छा। दूसरी बात, और जो उस पर विश्वास करता है, परमेश्वर की इच्छा है प्रभु पुत्र पर विश्वास करिए, दूसरी इच्छा। तीसरी बात, वो आनंद जीवन पाए, परमेश्वर पिता की इच्छा है कि पुत्र के द्वारा आनंद जीवन पाए। चौथी बात, वो अनंत दिन उसे जिला उठाऊंगा, उसके लिए एक आशा बने रहे कि उसको आनंद जीवन प्राप्त होगा। ये चार बातें जो परमेश्वर की इच्छा में शामिल है 40 पद में, पुत्र को देखें, जाने कौन है ये पुत्र, ओ जब वो क्रूस पर था लोग उसको देख रहे थे, आज क्रूस पर टांग कर यीशु को देखने से कुछ नहीं होगा। क्रॉस कितने अधिक घर में लगा लीजिए, गले में टांग लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, उससे कुछ नहीं होगा। कितना सुंदर बना लीजिए, चमकीला ले आइए, सोने के लिए आइए, चांदी के लिए आइए, सब कुछ, अरे मैंने तो सोने का क्रॉस रखा है, कुछ नहीं होगा। आज भी प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर टांग कर खड़ा रखते हैं लोग, क्रूस तो खाली फिर भी टांग रखते हैं सजाने के लिए। मेरे को नहीं समझ में आता क्रूस कहां होना चाहिए, कहां होना चाहिए क्रूस, कहां होना चाहिए? अंदर होना चाहिए, यहां होना चाहिए, यहां होना चाहिए, हमारे अंदर होना चाहिए। और तब लेकिन चार इच्छा फिर से दोहरा रहा हूं, यीशु को देखिए, यीशु पर विश्वास करिए, यीशु से जीवन पाइए, यीशु किससे आशा प्राप्त करिए। ये चार बातें 40 पद में जो प्रभु आपके लिए और मेरे लिए करने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो, तब प्रतिक्रिया क्या हुई? जल्दी से मैं दो बातें देकर समाप्त करूंगा। जब आगे जब पढ़ते हैं 41 पद में, इस पर यहूदी कुड़कुड़ाने लगे। इस पर यहूदी क्यों? ना तो उसको देख पा रहे थे, ना उसको समझ पा रहे थे, ना उसको जान पा रहे थे, ना उस पर विश्वास कर पा रहे थे, कुछ नहीं था, आंखें बंद थी उनकी। और मेरे प्रियो, दूसरा कुरिन्थियों उसका चौथा अध्याय और उसके 4 पद में यही है, चार अध्याय 4 में, कि संसार के ईश्वर ने लोगों की आंखों को अंधा कर रखा है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका 4 पद, संसार के ईश्वर ने संसार के लोगों की आंखों को अंधा कर रखा है ताकि वो उसको देखने ना पाए। और मुझे और आपको प्रार्थना करनी है, प्रभु हमारी आंखों को खोल दीजिए ताकि हम जैसे आप हैं आपको देखने पाए। और तब उसके बाद यीशु संसार की रोटी देने नहीं परंतु रोटी स्वयं रोटी बनकर आया। पहली बात, संक्षेप में खत्म करूंगा, पहली बात, यीशु संसार को रोटी देने के लिए नहीं आया, लेकिन यीशु संसार के लिए, मेरे और आपके लिए रोटी बनकर आया ताकि हम उसे खाएं, उसे लें, उसे अपनाएं, उससे तृप्त हों, उससे जीवन पाएं, उससे शक्ति पाएं, उससे सामर्थ पाएं, उससे वो विश्वास पाएं, उससे वो आनंद जीवन की आशा प्राप्त करें। वो रोटी बनकर आया, यीशु स्वयं रोटी है। दूसरी बात, वो यहां उपयोग होने के लिए नहीं आया कि हम उसको यूज कर लें। आज कितना जगह यीशु के नाम को इस यूज किया जाता है, यीशु के नाम से चंगाई है, यीशु के नाम से ये है, जरूर यीशु के नाम से सब कुछ है, लेकिन हम कितने उतने तक सीमित हैं, वहीं तक सीमित रहते हैं। यीशु के नाम से चंगाई है, यीशु के नाम से जीवन है, सब कुछ है, लेकिन केवल अगर हम उसको यीशु के नाम को उपयोग कर रहे हैं अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपनी चिंताओं के लिए, अपने कार्यों के लिए, अपने महिमा के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने राज के लिए यीशु के नाम को उपयोग कर रहे हैं, मेरे प्रिय गलत है। यीशु के नाम को, यीशु को मत उपयोग कीजिए, लेकिन यीशु की बहुमूल्यता को अपने जीवन में अपना लीजिए। यीशु की बहुमूल्यता को अपने जीवन में, उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो इंपॉर्टेंस है, उसको अपने जीवन में ले लीजिए, उसको अपने जीवन में वो ले लीजिए। तीसरी बात, वो हमारी मात्र चाहनाओं को पूरा नहीं करता, डिजायर्स पूरा नहीं करता, लेकिन हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, आवश्यकताओं पूरा करता है। वो जानता है मनुष्य की किस समय क्या आवश्यकता है, वो जानता था किस समय मनुष्य की आवश्यकता, इनको रोटी चाहिए उसने रोटी दी, लेकिन दूसरे दिन जानता था कि रोटी के पीछे केवल इसलिए नहीं आया लेकिन इनके दिमाग खराब हो गए, अब वो रोटी देने के तैयार नहीं है, अब वो रोटी के बारे में समझाने के तैयार है, अब वो चाहता है इससे बढ़ करके तुम जीवन को प्राप्त कर लो, है ना। कई बार हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, लोग कहते हैं हमारी प्रार्थना कीजिए, ना अविश्वासी हैं, आपके घर में कोई रिश्तेदार है, आपके घर में बीमार है, वो जानते हैं, आपने उनके लिए प्रार्थना करी और प्रार्थना के उत्तर में वो ठीक हो गया, कोई बात नहीं, ठीक उस टाइम, लेकिन वहाँ खत्म नहीं होना, प्रभु करता है, अविश्वासी को भी प्रभु चंगाई देता है, बहुत सारे हमने इस केसे को देखे, लेकिन उसके बाद जिम्मेदारी क्या है, उसके बाद जिम्मेदारी यह है कि उस भाई को उस बहन को अच्छी तरह से सच्चाई के साथ सुसमाचार सुनाया जाए, और वो व्यक्ति वो भाई वो बहन चाहे जो चंगाई पाई जो कुछ हुआ उसके साथ वो सुसमाचार पर विश्वास करे, पश्चाताप करे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अगर उसको शरीर चंगाई मिल गई है लेकिन उसकी आत्मा नहीं बची है, उसने उद्धार के संदेश को सुनकर विश्वास नहीं किया, यीशु को नहीं अपनाया, तो वो नरक में ही जाएगा, नरक में जाएगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है भला हो तू अंधा काड़ा लूला और लंगड़ा होकर के परमेश्वर के राज में प्रवेश करे इसके बजाय कि सब कुछ होकर भी तू नरक में जाए। तो हमें समझना है कि परमेश्वर की प्राथमिकता क्या है, समझना है। चौथी और अंतिम बात, वो हमारे जीवन का केंद्रीय अभिलाषा बनना है, जो हमारी डिजायर है, हमारी लॉन्गिंग है, वो हमारी सेंट्रल डिजायर, यीशु जीसस मस्ट बी अवर सेंट्रल डिजायर, यीशु हमारी केंद्रीय अभिलाषा लालसा होना है, ये सबसे मुख्य बात है, यहां प्रभु देना चाहता है, प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें, क्या सच में ये डिजायर हमारी, क्या ये डिजायर है कि यीशु मसीह मेरे जीवन का केंद्रीय लालसा अभिलाषा बन जाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थोड़ी देर अपने विचार मनों को शांत कीजिए। आज आप अपने लिए प्रभु से क्या कहेंगे, कितना अधिक आप यीशु को चाहते हैं, कितना अधिक आपके अंदर यीशु है, आपकी डिजायर क्या है, क्या ये मैं अंश अंश करके यीशु में बनता और बढ़ता चला जाऊं। प्रभु जी, परमेश्वर पिता, आज के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी सहायता के लिए आपने अपनी योजना में होकर आज हमें इस भवन में पहुंचाया है, और प्रभु अपने तुच्छ सेवक के द्वारा निर्बल अयोग्य सेवक के द्वारा इस वचन को हम तक पहुंचाया है। प्रभु यीशु मसीह, मेरी आंखों खोलिए, हम सबकी आंख खोलिए कि हम और अधिक आपको देख सकें, मेरे अंदर वो लालसा भली अभिलाषा उत्पन्न करिए कि आप मेरी और अधिक डिजायर बन सकें, केंद्र बन सकें। क्षमा कीजिए प्रभु जब हम असफल हुए, जब हमने किसी और पर दृष्टि की, निश्चय हमारे जीवन में ऐसा समय आया है, प्रभु आप हमें क्षमा करें, हम पर दया करें, बिना आपके हम कुछ नहीं कर सकते, इस मंडली पर आप दया करें, हमारे विश्वासी भाई बहनों पर दया करें, और प्रभु बहुत हों जो सचमुच में आपकी खोज हो सके। जब हम इस भवन को छोड़ते हैं, आपकी उपस्थिति में, आपके वचन की उपस्थिति में, आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई की उपस्थिति में भवन को छोड़ सकें, सहायता करें। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे, आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष दे।